نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وارتنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا, انسان بنایا, پھر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, پھر قرآن کا شعور دیا, اور اس شعور کے بعد ہم سب کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ یہ دنیا چند دن کی ہے اور ہم سب نے اس سے وقتی طور پہ فائدہ اٹھا کر ایک ایسی دنیا میں چلے جانا ہے کہ جس میں فنا نہیں, جس میں موت نہیں. آپ اور میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, اس لیے مجھے آپ میں سے کسی سے یہ کہنے اور پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ جب ہم کسی نان مسلم سے بات کرتے ہیں کہیں بھی راستوں میں, ایئرپورٹس پہ, پلینز میں, ٹرینز میں, تو جب تھوڑی سی راہ و رسم بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد عموماً بات بڑھانے کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ خیر آفٹر, وٹ ڈو یو تھنک وٹ ول بی گوئنگ ٹو ہیپن ود اس ان ڈے آف ججمنٹ لائک دس. تو وہ ہر ایک کا کچھ اور ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے میں مانتا نہیں, کوئی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا, وٹ ایور. لیکن یہاں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی نے بھی بچپن سے لے کر آج تک ہزاروں بار اپنے ہی بڑوں, ماں باپ, بہن بھائی اور جو دوسرے ساتھی ہیں, ان سے یہ نہ سنا ہو کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہاں ہمارے لیے کیا تیار ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کا آخری حصہ پڑھا, اور الحمدللہ میرے گمان کے مطابق ہماری سب ساتھی ہر جمعے کو اس سورت کی تلاوت بھی کرتی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں دو مختلف کرداروں کی بات ہے. ایک وہ لوگ جو مرنے کے بعد اپنی تکذیب اور اپنے اس حق کو جھٹلانے کی سزا پائیں گے, جنہوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت ہی سخت قسم کی وعیدیں دی ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی خوشخبریاں دی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا سے جانے کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی جنت میں لے جائے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی, یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے کہ جو مسلمان کے لیے تو بالکل بھی سیکرٹ نہیں ہے. اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوچ کر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ کے نبی, اگر آپ نے ہمیں مرنے کے بعد کی باتوں کا نہ بتایا ہوتا تو حقیقت ہے کہ موت ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا نہ قبول کرنے والا سانحہ ہوتی. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو نان مسلم دنیا سے جاتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, मैं सोचती हूँ कि उनको सब्र कैसे आते हैं अपने जाने वालों पे। अच्छा, ये चेहरा अब आज के बाद नहीं दिखना, आज के बाद किसी से बात नहीं करनी, आज के बाद कोई मुलाकात नहीं। आप देखिए कि आप कभी भी किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क या अपने प्यारों को छोड़कर कभी परदेश गए हों, या कोई आपका बेटा बेटी पढ़ने के लिए कहीं गया हो, तो वो रुस्ती का मंज़र बहुत तकलीफ़देह होता है। लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि वो जुदाई भी बड़ी खूबसूरत है, जिसमें बाद में मिलने की उम्मीद होती है। जब किसी से बिछड़ते हैं तो उसी से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि अब इतने दिन के बाद दोबारा मिलेंगे। कभी शौहर कहीं चले जाएं एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो थोड़ी सी जुदाई जो होती है वो और मोहब्बत में बेचैनी पैदा कर देती है। और इंसान कुछ दिन के बाद दोबारा जब मिलता है तो उसके जज्बात बिल्कुल नए सिरे से हरे हो चुके होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी या तो जन्नत है या जहन्नम, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने आदम और हवा को जब दुनिया में भेजा, और ये वाक़या आप सब ने कमोबेश 20 बार पढ़ा सुना होगा, कभी इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया जस्ट फॉर ऑनर, ट्रायल बेसिस पे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। वहाँ सारी जन्नत हलाल थी, आज की ज़ुबान में कह लीजिए पूरी जन्नत हलाल थी, सिर्फ़ एक जिसको आप कहना चाहिए सिम्बॉलिकली यानी अलामती तौर पर एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। आज की मेरी आपकी ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि सारी जन्नत हलाल थी, एक चीज़ हराम थी, और अल्लाह ताला ने दोनों को कह दिया वला तकरबा हाज़िहि शजरा फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन। देखो तुम दोनों इस दरख्त के फल के पास ना जाना। वो शराब नहीं थी, वो खंजीर का गोश्त नहीं था, वो कोई और ऐसी चीज़ नहीं थी जो आज इस्लाम में मना है, बस वो एक अल्लाह का हुक्म था, वो कुछ भी था। अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते थे कि जिसने अल्लाह के हुक्म पे नज़र रखी, फिर वो ये नहीं पूछता क्यों एंड बाय, इफ्स एंड बट्स नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, ना करने से क्या होगा, बस कहा ठीक है। और आदम अलैहिस्सलाम को क्या लेना था, इतनी प्यारी जन्नत छोड़कर कौन एक दरख्त के फल के पीछे आए। लेकिन याद रखिए, हम सब के अब्दुल आबाद दुश्मन इबलीस, जिसके दिल में हसद के जज्बे पल रहे थे, उसने उसी वीक पॉइंट को पकड़ा। आदम और हव्वा को क्या कहकर बहकाया, सूरत आल आराफ़ का दूसरा रुकू है, जाके पूरा पढ़ लीजिए। यानी उस जालिम ने अल्लाह के भी खिलाफ कर दिया, वक़ासमहुमा, झूठी कस्में खाईं, और कहा इधर आए आदम हम आपको बताएं, ये अल्लाह ने आपको इस दरख्त के फल से क्यों रोका है। भाई मुझे क्या लगे, नहीं मैं आपको बताता हूँ। क्या कहा, कहा उसने इसलिए मना किया है कि नऊज़ु बिल्ला, अल्लाह को डर है कि आप उस दरख्त का फल चख कर हमेशगी की ज़िंदगी ना पा लें और अल्लाह के मुकाबले पे ना आ जाएं, पहली बात। और दूसरी बात है कि आप इसको ज़रा चखिए तो सही, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। दो बातें याद रखिए, पूरा दीन आज हमारा इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि जिसने ख्वाहिश नफ्स और लंबी उम्र की तमन्ना को पाने के लिए अल्लाह के हुक्म को भुला दिया, फिर उसके लिए जन्नत से अल्लाह ताला की तरफ से निकलना ही था। खैर, वो किस्सा आप सब सुन चुके, दोनों जन्नत से निकल गए। जब अल्लाह की नाफरमानी का फल चखा, अल्लाह ताला ने जिस्म से लिबास उतरवा दिया। और ये जुमला आज मेरा हलम सबको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी का पहला असर जो इंसान पर पड़ता है, और जो पड़ा आदम और हवा की सूरत में, वो बेलिबास हो गए। लिबास उतरते ही तब है जब नाफरमानी होती है। डायरेक्ट बराह रास्त जाकर इबलीस ने ये नहीं कहा था कि कपड़े उतार दो, नहीं कहा था, वो बेवकूफ़ नहीं है। इबलीस हमारी तरह की तबलीग नहीं करता, डायरेक्ट जाकर सर पे थप्पड़ मारो, नहीं। वो इतने प्यार से उसने अंदर से, जिसको आप कहें कि वीक पॉइंट पकड़ा, अंदर से वीक पॉइंट क्या था कि इंसान लंबी उम्र चाहता, कभी मरना नहीं चाहता और बूढ़ा नहीं होना चाहता। मैं अपने ऊपर लेकर आज इस मिसाल को अगर लूँ, अगर हम में से कोई आज ये बात सुन ले, मार्केट में कोई एक ऐसी दवा बन गई या कोई एक ऐसी क्रीम ईजाद हो गई कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान बूढ़ा नहीं होता, रिंकल्स गई, जवानी फिर वापस मासूमियत के साथ 15-16 साल की उम्र की आ गई, अपने ऊपर लेकर मैं भी और आप सब सोचें, हम में से कितने हैं जो उस क्रीम को हासिल नहीं करना चाहेंगे। वो कहेंगे महंगी बहुत, हम कहेंगे हु केयर्स, पैसा होता है इसलिए कि जवान लगे, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो असल में उसमें पिग की चर्बी डली हुई है। पिग का नाम मैंने बड़े शौर से लिया क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम जिससे नफरत करते हैं वो पिग है। इवन वो लोग भी जो शराब पीते हैं वो पिग नहीं खाते, ये भी एक नॉन मुस्लिम्स क्वेश्चन करते हैं कि वाई। खैर, किस्सा मुख्तसर, यानी उस क्रीम में कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इस्लाम में सरासर हराम है। क्या मेरे आपके खूबसूरत लगने और जवान लगने का ये कड़ा इम्तिहान नहीं होगा? फिर कितने बचते हैं? कई तो कहेंगे हाँ मजबूरी में सब जायज़ है, और मजबूरी क्या है हम सब जानते हैं। बस कह लीजिए, उलमा कहते हैं कि जहाँ ख्वाहिश दिल में आई वहाँ अल्लाह का हुक्म भूल गया। आज भी बहुत अल्लाह से डरते हैं सब, किसी को गलत से गलत काम करते देखकर कभी मत सोचें कि इसको अल्लाह का खौफ नहीं है। मत सोचिए कि अल्लाह से नहीं डरता, डरता भी है, खौफ भी है, तभी तो बाद में जाके रोता है, तभी तो फिर जाकर उमरा करता है, तभी तो जाके हज करता है, तभी तो जाकर 500 दानों की तस्बीह पकड़कर अस्तगफार पढ़ता है। याद रखिए, आदम के बच्चे हैं मैं और आप। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल हो गई और उन्होंने उस भूल में पढ़कर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन उस पर जमे नहीं रहे, इब्लीस के कहने पर दरख्त का फल चख लिया, लेकिन फौरन एहसास हुआ, वक़ाला रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कि अल्लाह, हम दोनों ने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया, और अगर अब तूने हमें माफ़ ना किया, हम पे रहम ना किया, तो हम तो खसारा पा जाएंगे। तो याद रखिए कि अल्लाह के हुक्म को भूल गए थे आदम, जानबूझ के नहीं किया। फनसिया आदम, कुरान में आता है आदम भूल गए, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला उनकी साइड ले रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे आदम ने जान के गलती नहीं की, वो भूल गए और उनमें अज़म की पुख्तगी नहीं थी। लेकिन याद रखिए कि तौबा करने से फिर भी पीछे ना हटे। खैर, जब अल्लाह सुब्हान तआला ने माफ़ कर दिया, जाइए फताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह को माफ़ करते हैं क्योंकि वो है ही तवाबुर रहीम। तो आदम अलैहिस्सलाम का फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि अल्लाह, अगर अब आप हमसे राज़ी हैं, माफ़ तो कर ही दिया, तो फिर वापस उस जन्नत में भेज दें। देखिए, मैंने आपने भी जन्नत देखी नहीं, आज मैं थोड़ी सी झलकियाँ रखूँगी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला। अभी तो हमने देखी नहीं, सिर्फ सुनी है, सिर्फ किताबों में पढ़ा है। तो हमारा हाल क्या है कि हर दिन इस बात के साथ सुबह होती है कि अल्लाह, अगर खैर से आज तेरे पास पहुंच गए तो जन्नत में दोपहर का खाना देना, और अगर रात में चले गए तो वो रात हमारी जन्नत में हो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत क्या होगी कि जो उस जन्नत में कुछ दिन या कुछ घड़ियाँ गुजार चुके। तभी तो अल्लाह ने छुपा दी, फला तालम नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने क्या तैयार किया। आप देखिए कि ये बहुत मुमकिन था कि आसमान शीशे का होता, जिसको आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट होता, और उसमें से हम ऊपर जन्नत की झलकियाँ देखते रहते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। क्यों? पहली बार सरप्राइज़ अच्छा लगता है। हम किसी को कुछ देते हैं तो खोल के हाथ में नहीं देते, पैक करके देते हैं, एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके कि चलो थोड़ी देर के बाद जब खोलेगा तो उसको अच्छा लगेगा। दूसरी बात जो इससे बहुत अहम है, वल्लाही कसम नहीं खाना चाहती क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मेरी बात को मान लेंगे ऐसे भी, अगर खुली आंखों से ये जन्नत दिख रही होती, आज दुनिया में ना कोई नाफरमानी करता, ना अल्लाह का हुक्म छोड़ता, फिर तो दुनिया का सारा निज़ाम बिगड़ जाता। कोई गुनाह नहीं, कोई कुफर नहीं, कोई सरकशी नहीं, कोई तकजीब नहीं, क्योंकि उसको देख कर कोई पीछे नहीं आना चाहेगा। अब सवाल पैदा होता है कि आज मैं और आप उस जन्नत की तलब में यहाँ आके बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलु सालिहात, जो लोग ईमान लाकर अमल सालिह करते हैं उनके लिए जन्नत है। और अभी जो आयत पढ़ी उसमें तो जन्नतुल फिरदौस की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम सवाल करो तो जन्नत का सवाल करो, और कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिरदौस का, क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श है। चले थोड़ा सा तसव्वुर में करें, जन्नत की पहली सुबह है और आप अपने महल की ऊंचाई पर खड़ी हैं और आप दूर से जन्नत के नज़ारे करती हैं। वहाँ नहरें भी हैं, वहाँ ज़मीन व आसमान बदल चुके, वहाँ आपका महल कितना खूबसूरत है। एक तरफ आपके दूध की नहर है, थोड़ा सा आगे नज़र डालें तो उसमें आपको शहद की नहर दिखती है, उसके आगे पानी की नहर है। इमेजिनेशन में कोई दुनिया का बेस्ट रिजॉर्ट जो आपने कभी विज़िट किया उसको ले आए। मैं जब भी कभी नियाग्रा जाऊं और नियाग्रा फॉल के पास खड़ी हूं तो मेरे जहन में यही इमेजिनेशन आता है जो मैं इस वक्त आपको करवाना चाहती हूं कि जन्नत है, आप खूबसूरत कपड़ों में मलबूस हैं, और हकीकत यह है कि जन्नत में इतना कुछ है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या फरमाया। कुरान पाक की चंद आयात आपके सामने रखती हूँ क्योंकि मैं कोई बात यहाँ लफ्ज़ों के खूबसूरती में ला कर आपसे अपनी तरफ से नहीं करना चाहती। जो कहूँ आपसे वो कहूँ जो रब ने कहा है। क्योंकि ये कोई खेल नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है। हम सब ने उस जन्नत में जाना है जिसका नाम ही दारुस्सलाम है, सलामती वाला घर, और अल्लाह का नाम अस्सलाम है। हर एक के घर के बाहर अक्सर उसी का नाम लिखा होता है। तो जन्नत सलामतियों का घर है, ना वहाँ बीमारी है, ना वहाँ परेशानी है, ना वहाँ बुढ़ापा है, ना वहाँ तकलीफ़ है, ना वहाँ दर्द है। सूरह आले इमरान 133 अगर सिर्फ चंद रेफरेंस नोट कर लेना तो आप घर जाके अपने बच्चों के साथ जन्नत की ये डिस्क्रिप्शन कुरान की आयतें खोल खोल के भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अर्दुहा कर दिस समावाती वल अर्द, जन्नत तो वो है कि उसकी चौड़ाई सिर्फ आसमानों ज़मीन की वसत के बराबर है। आप हमेशा जानते हैं कि कपड़े की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। थान कभी एक गज़ का होता है, दो का होता है, डेढ़ का होगा, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होती है, कई गज़ की होती है। जन्नत को अगर सिर्फ बाय वेट समझते हैं, चौड़ाई के वाइज अगर सीधा किया जाए ना, तो पूरा आसमान और पूरी ज़मीन फ्लैट की जाए, सिर्फ इतनी जन्नत की चौड़ाई है, तो लंबाई का अंदाज़ा कोई क्या करे। बस कहते हैं कि यहाँ चौड़ाई से ज़्यादा अर्द से मुराद कीमत है। अरबी में ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो फिर इसका मफहूम क्या है कि जन्नत की कीमत कितनी है, पूरी ज़मीन और पूरी आसमान। फिर आप देखिए कि जन्नत में फल होंगे, बहारें होंगी और मौसमी फल नहीं होंगे, और हमेशा के साए होंगे। सूरत रात का आयत 30 का नंबर आप नोट कीजिए, जाके ख़ुद देखिएगा। आम किसको अच्छे लगते हैं? मेरा हाल सवाल मैंने गलत किया, मुझे ऐसे पूछना चाहिए था कि आम किसको अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही है ना। अच्छा, जो आम फ्रेश सीज़न में आता है, कि आजकल अगर वही आम हम मंगा कर स्टोरेज से खाएं तो टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। जन्नत के फल सीजनल नहीं है। जन्नत के फलों में जो टेस्ट है ना, वो हमेशा रहेगा। चलिए मान लेते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, सर्दियों में ज़रूर खाना है, हम गर्मियों में खा लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरा आपसे कि गर्मियों में उतने आम खा सकते हैं जितना दिल करता है? कहीं शुगर बाजी है तो कहीं मोटापा भाई है, और क्या सच बताएं, क्या दुनिया में हम फल होने के बावजूद उतना खा सकते हैं जितना हमारा दिल करता है? हमारे वालिद कहा करते थे कि आम हों और बहुत से हों, थोड़े आम क्या। कभी वो किसी को प्लेट में एक दो आम रखा देकर देखते थे तो कहते थे ये तो आमों की इंसल्ट है, सारे आम काट देते थे। पहले काटने फिर कहना खाओ, खाते नहीं, चलो मैं खाता हूँ। सब कहते थे आप काटते ही इसलिए कि आप सारे खाएं। लेकिन सच बताइए, मौसम का भी फल हम पूरा खा सकते हैं? केला कितना अच्छा लगता है, आप कहते नहीं वेट बढ़ता है। जन्नत का फल जितना खाएंगे आप और मैं, उतना और खाने को दिल करेगा, और ना मोटापा और ना कुछ। फिर आप कहते हैं कि जन्नत के फलों के ऊपर छिलका नहीं है, और अंदर गुठली नहीं है, और ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठ रही, उसको धोना नहीं पड़ता। आप अपने तख्त पे बैठी हैं, दूर से अंगूरों की बेल है आपके पास, आपका दिल चाहता है कि मैं इसको खाऊं। हदीस में आता है कि वो बेल खुद बहुत भड़ती भड़ती आपके मुंह के पास आ जाएगी, जितना चाहेंगे आप उसको खा लेंगे। जब आपका दिल भरेगा, खुद बहुत अल्लाह के हुक्म से वो दूर जाएगी और उसको फौरन रेनोवेट कर दिया जाएगा। या तफज्जरू नहा तफजीरा का लफ्ज़ आता है, और अल्लाह ताला कहते हैं हम करीब लाएंगे, वापस जाएंगे, जितना सा आपने खाया होगा ना, वो सारा वापस उसको लगाकर वापस सीधा फिर उसकी असल फॉर्म में कर दिया जाएगा। दुनिया में भी कोई घर तभी अच्छा रहता है जब साथ साथ उसको रेनोवेट करते रहते हैं। तो जन्नत के फल आप और मैं सोचें। फिर देखिए, एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है जन्नत के बारे में, कि जन्नत में हम खाएंगे मगर भूख के लिए नहीं। दुनिया में हम क्यों खाते हैं? भूख लगी, चलिए इमेजिन कीजिए आपको क्या पसंद है, अपनी फेवरेट चीज़ सोच लें। मैं अक्सर बच्चों की फेवरेट चीज़ की मिसाल देती हूँ, और वो है आइसक्रीम। बच्चे को आइसक्रीम पसंद है, खाइए, दीजिए एक कप, बहुत मज़ा आया। यू वांट मोर? यस, एक और दे दे। अब खा रहा है तो ज़रा सी उसकी स्पीड स्लो हुई, खैर थोड़ी देर लगा के ख़त्म की, तो आप ऑफ़र करें तीसरी, इट्स ओके। नो नो, सच बताइए, पहला कप टेस्ट का था, दूसरा वो हिर्स का था कि आज दो मिल गए, तीसरा एक मजबूरी का बनेगा, और चौथा कप सजा हो गया। आप कहेंगे खाओ, आज मैंने तुम्हें चार ही खिलाने हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी पसंद के 10 खाने रखे हों, हमें तब तक उनका मज़ा आ रहा होता है जब तक टमी और बैली फिल नहीं होती। हमारी तो यहाँ तक बैली फिल होती है, यहाँ डाल के देखते हैं इधर आ गया खाना, अब इतना काफ़ी है, ऐसी है ना। जन्नत के फल भूख के लिए नहीं है, जस्ट फॉर स्नैकिंग। ये स्नैकिंग चिप टॉप टिप टॉप होकर फिंगर फूड ले लीजिए, खा लीजिए, उसे पेट नहीं भरता। जन्नत में हम भूख और प्यास की मुसीबतों से भी बचे होंगे, जस्ट लाइक फॉर फन फन, जैसे च्युइंगम चबाता है एक इंसान, बाद में इलायची मुंह में डाल ली, टेस्ट के लिए होगा, और उसको खाने के बाद दुनिया वाली चीज़ें नहीं होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में कुछ भी खा लो, आखिर में उसका इंजाम क्या है हम सब जानते हैं। और हमारे घरों में सबसे ज़्यादा कीमती और ज़्यादा पैसा जिस पे लगता है वो वॉशरूम्स टॉयलेट्स, उधर ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन देखा जाए तो वो क्या है, वो हमारे जिस्म को फरागत के लिए मददगार होते हैं, लेकिन जन्नत का खाना खाने के बाद ना पेशाब और ना पखाना। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के नबी फिर होगा क्या, दुनिया में तो खाते हैं तो ज़ाहिर है निकले ना जिस्म से, तो आगे और खाया नहीं जाएगा। तो आपने फरमाया कि जन्नतियों को एक डिकार आएगी खुशबू वाली, और उनकी सांस के साथ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा, उसी से वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। कोई खाज मुल्ला नहीं चाहिए वहाँ, कोई सेवन अप में लेमन डाल के नहीं खाना पड़ेगा, और कोई वो पेट दर्द का कावा नहीं पीना पड़ेगा। जन्नत में खाना खाने के बाद कोई उसका जिस्म से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा। अब आप बताइए और क्या चाहिए, भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है।